श्रीपाद परमहंस परिव्राज काचार्य श्रीमत कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य पीवीटी प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधाकुंड श्यामकुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ बली धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदी भागवतम का है भागवत किताब बुक्स बुक्स का है। ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानंजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। किताब का है वंदे अहं श्री गुरु श्रीजुता पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सह गण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 8 भगवान सिंह द्वारा असुर राज का बद्ध। कौन असुर राज? कौन? हिरण्यकशिपु। कौन सा महीना में उसकी बद्ध हुआ था? अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। और ये कौन सा महीना चल रहा है? लेकिन हम पढ़ रहे कार्तिक महीना में। हिरण्यकशिपु क्या क्या वरदान था? नहीं मरेगा है? 12 महीने में किसी भी महीना में मरेगा नहीं है? इसलिए पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में। अच्छा, ओके, तो इस अध्याय के 28 नंबर और 29 नंबर श्लोक दोनों श्लोक है। 28 नंबर श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है, तो 29 नंबर श्लोक में तात्पर्य है। तो 28 नंबर श्लोक में खुद ही पढ़ लेता हूं, 29 नंबर साथ में पढ़
तं शयन वेगं शतचंद्रवर्त्मावेश चरन्तं चन्द्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरमोस्त्वनवल्लवणं निमीलिताख्यं जगृहे महाजपः।
अट्टहास करते हुए अत्यंत प्रबल तथा शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने हिरण्यकशिप को पकड़ लिया, जो किसी प्रकार का वार करने की संभावना छोड़े बिना अपनी तलवार ढाल से अपनी रक्षा कर रहा था। वह कभी बाज की गति से आकाश में चला जाता था और कभी पृथ्वी पर चला आता था। वह नृसिंहदेव के अट्टहास के भय से अपनी आंखें बंद कर दिए थे। 29 नंबर श्लोक।
विश्वक स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिः व्यालः यथा आकुं कुलिशक्षतः तोचं द्वारिः उरुं आपत्य ददार लीलया नखै यथा अहिं गरुडः महाबीसं। विश्वक् स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्याल यताख्यं कुलिशाख्यत त्वचम्। द्वाजिर्म उपत्यः ददार लीलया नखैर्यथारिं गरुड महाबीसम्। विश्वक् स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्याल यताख्युं कुलिशाख्यत त्वचम्। द्वायुन्मुपात्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुड महाबीसम्। विश्वक् स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्याल यथाख्युं कुलिशाख्यत त्वचम्। द्वायिम् उपत्य ददार लीलया नखैर्यथाहिं गरुड महाविषम्।
कोई नहीं पढ़ना चाहते, कोई पढ़ो।
विश्वक् स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि
शब्दार्थ विश्व चारों स्फुरंतम अपने अंग हिलाते हुए ग्रहण आतुरम पकड़े जाने से पीड़ित अनु सिंह देव ने व्याल सांप जथा जिस तरह आखुम चूहे को कुलिस क्षत जो इंद्र के वज्र द्वारा भी न काटी जा सके त्वचम त्वचा या खाल को द्वारी देहली पर उरुम अपनी जंघ पर आपत्य रख कर ददार फाड़ डाला लीलया सरलता से नखई अपने नखनों से जथा जिस प्रकार अहिम सांप को गरुड़ गरुड़ विष्णु का वाहन महाविषम अत्यंत विषधर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद सभी लोग दोहराइए। जिस प्रकार कोई सांप किसी चूहे को या कोई गरुड़ किसी अत्यंत विषैले सर्प को पकड़ ले उसी तरह भगवान सिंहदेव ने उस हिरण्यकशिप को दबोच लिया जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। पकड़े जाने पर जो ही वह अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग इधर उधर तथा चारों ओर छटपटाने लगा तो ही नृसिंहदेव ने उस असुर को अपने गोद में दबोच लिया और अपनी जांघों के सहारा जंघे के सहारा देकर उस सभा भवन की देहली पर अपने हाथों के नाखूनों से सरलतापूर्वक उस असुर को फाड़ डाला तो हिरण्यकशिपु मर गया है। पहले प्रकट हुए थे भगवान ने 17 नंबर श्लोक में है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है वो, सत्यं विधातु निज भृत्य भाषितम है। अपने भृत्य प्रहलाद के वचन को सत्य निभाने के लिए भगवान ने प्रकट हुआ था, लेकिन इस श्लोक में इसको फाड़ डाला। तात्पर्य हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वह न तो स्थल पर मरेगा न आकाश में, अतएव ब्रह्मा जी के वचन को अक्षत बनाए रखने के लिए नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिप के शरीर को अपनी गोद में रख लिया जो न तो स्थल था न आकाश। उसे यह भी वरदान मिला था कि वह न तो रात्रि में मरेगा न दिन में, अतः ब्रह्मा के इस वचन को रखने के लिए भगवान ने हिरण्यकशिप को संध्या समय मारा जो दिन का अवसान था रात्रि का शुभारंभ। किंतु जो न तो दिन था न रात, उसने ब्रह्मा जी से यह भी वर प्राप्त कर रखा था कि वह न तो किसी हथियार से मरे न ही किसी मृत या जीवित व्यक्ति के द्वारा। अतः ब्रह्मा के वचन को रखने के लिए भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिप के शरीर को अपने नखनों से चीर दिया जो न तो हथियार थे नहीं मृत या जीवित थे। निसंद है नाखूनों को मृत कहा जा सकता है, किंतु साथ ही उन्हें जीवित भी कहा जा सकता है। ब्रह्मा के समस्त वरदानों का अक्षय बाक्षत बनाए रखने के लिए भगवान सिंहदेव ने उस महान असुर हिरण्यकशिप को अत्यंत विषम स्थिति में
किंतु वो अत्यंत सरलता से मार डाला। भगवान के साथ में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है, चैलेंज कर सकते कोई कोई भी नहीं। भीष्म देव ने चैलेंज किया कि नहीं किया, ना क्या चैलेंज किया? भगवान ने कहे कि ये महाभारत युद्ध में मैं कभी अस्त्र धारण, तो भीष्म देव ने क्या बोला? मैं आपको अस्त्र धारण करा के ही रखूंगा, हैं चिंता मत कीजिए। तो किसका बात रहा हैं? भीष्म भगवान को उठाना पड़ा ना, वो रथ का पहिया को उठा के भागे मारने के लिए। किसको बोले थे मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा कोई कभी कोई है। लेकिन वो भक्त की बात था, भक्त में और भगवान की बात बीच में यदि बातचीत होता है, चैलेंज हो जाता, तो किसका जीत होता है? हैं भक्त का है। कोई व्यक्ति भक्त के शरण में आएगा तो भगवान से भी जीत लेगा। हैं मैदानव था, मैदानव को मारने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा ले लिया था, नारद जी ने इसको बता दिया किसके शरण में चले जाए, अर्जुन की शरण में चला जाए, बच गया। फिर पांडव लोगों के लिए मैदानव ने बहुत सुंदर है, चित्रसेन गंधर्व हैं आकाश में जा रहा था, गालव ऋषि स्नान कर रहे थे सरजू नदी में, थूक दिया ऊपर से विमान से, थूका कहाँ गिरा? गालव ऋषि के अंजु मैंने पानी जब तर्पण कर रहे थे उसने गिरा। आखिर वो कहा कि ठीक है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे अभिशाप देगी तो मैं इसको समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं, मेरे तप शक्ति घट जाएगा। ब्राह्मण का, ब्राह्मण को रक्षा करना क्षत्रिय का काम है, रामचंद्र जी के राज्य है, राजा राम है, राम जी के पास कहा देखिए आपके राज्य में क्या चल रहा है, मेरे तर्पण जल में वो थूक दिया। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा कर लिया? सूर्यास्त पहले इसको समाप्त कर दूंगा। किसको? है चित्रसेन गंधर्व का नाम नहीं रहेगा। नाराज जी खेल लगा दी, बोले जाओ थोड़ा, और वो रहा था बेचारा को जानेगा, बोला मरूंगा तो प्रतिज्ञा, राम का प्रतिज्ञा कौन रखेगा? अरे क्यों रो रहा है, जा थोड़ा हनुमान जी के शरण में, तो हनुमान जी के माँ का शरण में चले जाओ। अंजना जा रहे हैं स्नान करके, जब आते ना वो कोई भी बात कोई भी शरण में जाएगा उसको दृढ़ रखेंगे, बस चले गया। अंजना जी बोले तो पूछा नहीं, अंजना क्या है क्या, बहुत रोने लगे तो अंजना कहा कि चिंता मत करो, मैं तुमको रक्षा करूँगा, मेरे एक पुत्र है तुझे रक्षा करेगा, चिंता मत करो। तो अंजना की शरण में चला गया, तो हनुमान जी आके आए तो माँ अंजना ने कही देख बेटा मैं एक को शरण में रखा हूँ, तेरे को इसको रखना है, यदि इसको नहीं ये इसका जान रहे नहीं रहेगा मेरे, मैं भी जान नहीं रखूँगा। हाँ तो फिर क्या हुआ? हनुमान पूछे भाई क्या है, कौन है तुम्हारा शत्रु? राम जी ने प्रतिज्ञा ली, बोला क्या करूँगी। हाँ फिर किसका जीत हुआ? चित्रसेन मर गया राम से बड़ा हनुमान जी ने बैठे तो उनके घर के अंदर चित्रसेन है, और द्वारे पर द्वार पर बढ़कर हनुमान जी राम सीताराम सीताराम रट रहे हैं। भगवान तीनों लोक में ढूंढते ढूंढते कहाँ गए चित्रसेन? कोई नारद जी ने खड़ रहा, अरे वो कहाँ ढूंढ रहे प्रभु, वो आपका ही दास की घर में छुपा हुआ है। तो इसलिए भगवान के साथ चैलेंज केवल इनके शुद्ध भक्त का पास में जो चैलेंज होता है, फिर वो है भगवान कहते मेरे से मेरे भक्ता भक्त बड़ा है, मेरे भक्त की सेवा मेरे से भी अधिक है। तो लेकिन ये तो अभी राक्षस की भूमिका ले रखा ना, ये भी भगवान के भक्त है, कौन है? हिरण्यकशिप कौन है? जय है, जय विजय हिरण्यकशिप हिरण्यक्ष है, वो वैकुंठ के दर्जे पर इनकी इनकी द्वारपाल है, लेकिन अभी तो कुछ दूसरे भूमिका में है, हैं? क्योंकि इसको तो ऐसा ही वो मुनि ऋषि लोग ने कहे थे अभिशाप दे दिए राक्षस जोन में जाने के लिए, लेकिन वो ऑप्शन दिए, पद्म पुराण जैसे वर्णन आया भगवान ने ऑप्शन दिए कि देखो यदि मेरी ऐसे ही जन्म तो लेना पड़ेगा, ऋषि के मुनि के वचन ब्राह्मण वचन में टालूंगा नहीं, लेकिन यदि ऐसे ही जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन मेरे भक्त के रूप में जन्म लोगे तो तुमको कितनी बार? 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन देखो तुम यदि विलियन का रोल निभा पाओगे, हैं मेरे लीला में मैं भी आऊंगा, तीन बार जब तुम मेरी शत्रु बन जाओगे तो फिर तीन बार में आ जाओगे, तीन शत्रु बन के तीन बार मेरे पास आ जाओगे तीन टाइम में। तो बोले जो भी है शत्रु बने कुछ बने, लेकिन ज्यादा समय आपसे हम विच्छेद नहीं होना चाहे, इसलिए जानबूझ कर राक्षस बने हैं। ये तो ड्रामा के राक्षस है, असली राक्षस कौन है? ये तो केवल लीला में भगवान को थोड़ा आनंद कुश्ती कसरत करना हमारा जैसी इच्छा होती है। ये जो भी इच्छा हमारे मन में है सारे इच्छा किसके पास है? भगवान के पास नहीं होता तो हमारे पास कैसे आता है? हम तो उनकी अंश है ना, है भगवान का ही अंश है। तो भगवान को ऐसे जब कुश्ती कसरत तो किसके साथ कुश्ती कसरत करेंगे? तो इसलिए अपने पार्षदों को बद्ध जीवन के साथ भगवान लीला नहीं करते हैं, ये मुक्त जीव मुक्त आत्माओं के साथ ही भगवान का सब कुछ लीला जो भी। तो इसलिए वो अपने भीलिए अपने धाम से ही भेजते हैं, अपने पार्षदों को ही भेजते हैं, क्योंकि हम गलती किए प्रभु, मैं हम हमारे अपने अभिशाप वापस ले लेते। भगवान कहे कि नहीं, ये सब मेरे इच्छा से हुआ है, आप शांत चिंता मत करो। लेकिन भगवान ने अपने दासों को बुलाकर यही धरा पर लेके आते हैं, उनको भी ले आते हैं कैसे भी हो वो आए, लेकिन इसी यहाँ पर रोल करते हैं कि ये सब हम सभी के प्रति कृपा करने के लिए, बद्ध जीवन को भी कृपा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद शिवधाम सह अवतरी। चैतन्य महाप्रभु और नृसिंह में कोई भेद है ना क्या है? चैतन्य महाप्रभु को नृसिंह रूप धारण किया है, सबसे पहला जो भगवत्ता का परिचय दिए तो वो नृसिंह रूप धारण किए थे, कहाँ पर? शिवासंगन में है, जो सभी वो धमकी दिए थे तब पड़ोसी लोग, शिवाचिया तेरे घर को उखाड़ के सब फेंक देंगे, काम चले गए काजी के पास ऑलरेडी गए हैं रिपोर्ट देने के लिए है। शिवास ठाकुर थोड़ा चिंतित होकर क्या होगा, अपने डेटी रूप में बैठकर नृसिंहद मंत्र थोड़ा जपते थे, नृसिंहदेव को ध्यान करते थे है, सालग्राम तो पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु गंगा के किनारे घूम रहे थे सुबह सुबह, उनको सब पता चल गया, वहीं से आवास में पूरा आवेश होकर भाग के आए। आके नृसिंह जो कमरे के अंदर बैठकर ये कौन शिवास ठाकुर नृसिंह को ध्यान करते थे, उस दर्जे पर एक लात लगाए ता खुल गया, वो डर गए क्या हो गया, वो सोच के आ गए कौन काजी का लोग आ गए मुझे अरेस्ट करने, लेकिन देखे कि कौन है निमान, अरे शिवासिया अभी तक मुझे पहचाना नहीं, किसको डरता है, कहा रे पुजिस करिष्कार ध्यान जहारे पूजिस देख सही विद्यमान, जिसको पूजा करता ध्यान कर देख तेरे सामने, सीधा विष्णु खटुल में उठकर बैठ गया और सभी सावग्राम गोद में ले लिए, तुरंत ही विरासन में नृसिंह रूप में प्रकट होकर बैठ गए है। शिवाशंकर में जाओगे तो मैं यहाँ पर देखो ना वहां नृसिंह मूर्ति साइड में है। तो इसलिए भगवान कभी कभी ऐसे रूप ऐसे ला में आते हैं हमको सिखाने के लिए, कौन सा रूल करना चाहते हो तुम, कौन सा भाग कौन सा कैसा बनना चाहता है, हिरण्यकशिपु बनना चाहता है ना प्रहलाद बनना चाहता है, दोनों उनकी भक्त हैं। यदि प्रहलाद की तरफ तुम मेरी भक्ति करेगा तभी तेरी मैं फिर तुम रक्षा करूंगा, सदा रक्षा करूंगा, गोद में ले लूंगा गोद में बैठा, और यदि तुम हिरण्यकशिपु के रूप में बनेगा तुझे मैं क्या करूंगा फाट डालूंगा, ऐसा ही है वैसे उग्र मूर्ति देखा धारण के बाद फाट डालूंगा है। केहू माने केहू ना माने सभी तारे दास, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, ये सभी उन्हीं के दास है, किसका दास है भगवान का दास है ना, जीवे रो स्वरूप है कृष्ण रो नित्य दास, नित्य दास है ये दास का शब्द का यू कभी ये बदलेगा नहीं, ये नित्य दास है। लेकिन इस बात को कोई स्वीकार करता और कोई स्वीकार नहीं करता, जो स्वीकार करते वो देवता है, जो स्वीकार नहीं करते वो, जो स्वीकार करते वो भक्त है, जो स्वीकार नहीं करते वो अभक्त है। केहू माने केहू ना माने सभी तारे दास, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सभी उनकी दास है, सभी उन्हीं का अंश है। ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है सनातन है। इसलिए वृंदावन ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में केहू माने केहू ना माने सभी तारे दास, जेहू ना माने
अपना गुणे सही जाए
नाश, नहीं मानेगा तो फिर उग्र मूर्ति को देखेगा है? मानेगा तो बहुत अच्छा है, है? बेटा अच्छा है, लेकिन भगवान किसी भी स्थिति में सदा मंगलमय मंगलमय है, उनके सारी कार्य मंगलमय है, है? चाहे किसी को आशीर्वाद दें किसी को फाट डालें, कोई फर्क मैंने जो जो को फाट डालते जिसको मार डालते उसका कोई नुकसान होता ना क्या? हाँ उसको वो उसको भी जमराज का तो की नहीं है कब शक्ति नहीं है बांध सकते हैं, तो वो भी भक्त मुक्ति प्राप्त कर लेता है, है? इसलिए मैं कहा ये हिरण्यकशिपु कि भगवान के दास था, लेकिन ये तो अभिनय करके हमको सिखाने के लिए ऐसा ये रोल किए हैं, वो हिरण्यकशिपु बन के हमको सिखा रहे हैं तो जॉब है, लेकिन हमें इससे क्या सीखना चाहिए, क्या बनना है, किसका फॉलो करना है कि प्रहलाद महाराज एक महाजन है, हिरण्यकशिपु को महाजन कहा गया नहीं, यदि वो दोनों ही भक्त है लेकिन जो जैसे रोल किया तो उसी आधार पर प्रहलाद महाराज का हम जानते हैं ये महाजन में से एक द्वादश महाजन में से एक महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वया सकी वयम, जमराज कहे हैं बलि माने प्रहलाद महाराज भगवान कहीं अनन्य भक्त है, ये बारह महाजन में एक महाजन है, नवधा भक्ति की एक अंग के आचार्य है, कौन सा अंग का आचार्य है प्रहलाद, विष्णु स्मरण 24 घंटे कृष्ण को स्मरण रखना है, तो इसीलिए हिरण्यकशिपु बोला ये तो सब समय कृष्ण को स्मरण रखते थे और सब समय भगवान विष्णु के नाम लेते थे, तो कहा कि प्रहलाद आप पढ़े ही प्रसंग पूरा कितने हिरण्यकशिपु कितनी प्रयास किया संपूर्ण प्रहलाद को नष्ट है विनाश करने के लिए है, उसका कोई भी चेष्टा समर्थ ने सफल हुआ नहीं हुआ, इसलिए बाद में देखा कि स्कूल का सारे छात्रों को भी संध अमर के देखा तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु के ऊपर समझ गया तो अमर हो गया, ये मैं क्या इसको मारूंगा ये तो अमर हो गया भाई इसके लिए मैं ही मरूंगा है, लेकिन संध अमर को दोबारा इसको ले गए कहाँ स्कूल में ले गए, क्योंकि नहीं नहीं हमें इसको सुधारेंगे, फिर हम लोग नहीं पारेंगे लेकिन हमारे गुरु जी आने वाले हो थोड़ा दिन में कौन शुक्राचार्य बदल जाएगा मति, लेकिन वो बदलने वाले थोड़ी है, लेकिन तो गए सारे गुरुकुल को सभी को और जितने बच्चे गुरुकुल में थे सभी को भक्त बना दिए, आ संध्या अमर के तो लगाए मैंने दोनों भाग के आए हिरण को जो कहे कि देखिए तुम्हारा बेटा ये किया, सारा गुरुकुल को क्या बना दिया हाँ सभी को विष्णु भक्त बना दिया सारे बच्चों में, हिरण को जो क्रोधित होकर इसलिए कहा आज तुझे मेरा हाथ में समाप्त करूंगा है, है? अरे प्रहलाद उन्होंने कहा है? अरे प्रहलाद तूने सदैव मेरे अतिरिक्त और कोई किसी परम पुरुष व किसी दूसरे को ईश्वर मानता है जो हर एक के ऊपर है हर एक का नियंता है जो सर्वव्यापी है, लेकिन वो कहाँ है, यदि वह सर्वत्र है तो मेरे सामने है एक खंभे में क्यों नहीं है, कौन कहा? प्रहलाद ने बड़े बड़े शांत भाव से, ये तो क्रोधित हो रहा था लेकिन प्रहलाद को कोई क्रोध नहीं आता था, वो शांत रूप से रह गए कि पिताजी एक खंभे में भी है वो इतना क्रोधित हो रहा था लेकिन प्रहलाद तो बड़े शांत भाव से उत्तर दे रहे थे है खंभे में है, बड़ा क्रोधित हो गया और मुष्टि आए मुष्टि प्रहार की किसमें खड़ग भी पकड़ा ले तो खड़ग भी पकड़ा था पदाघात भी करा था एक मुष्टि में मुखी लगाया खंभा में, तो क्या सुना फिर है प्रहलाद की वचन को सत्य निभाने के लिए भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए हैं, सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुत रूप उद्भवं खं स्तंभे सवायां न मृगं न मानुषं न मृग था अर्थात सिंह था न मनुष्य था, सिंह का मुख है और शरीर किसका मनुष्य का, ऐसे अद्भुत रूप में भगवान ने इस खंभे से, पहले तो आवाज भीषण आवाज सुनाई पड़ा है, कहाँ से आवाज आ रहा है चारों साइड देख रहे थे सारे राक्षस लोग देख रहे थे है? लेकिन इतने आवाज था कि सुन नहीं पाते थे कान में हाथ देने पर, लेकिन तो इतने भयंकर आवाज आ रहा था। भगवान प्रकट हुए थे, प्रकट हो गए किसके वचन को सत्य निभाने के लिए, निज भृत्य भाषित हम किसका है, प्रहलाद महाराज कहेगी कि हाँ खम्भ में है भगवान है, और किसके वचन को सत्य निभाए, ब्रह्मा जी कैसे है बोलो, ब्रह्मा जी कहते कि मैंने किसी भी जानवर के हाथ में, किसी भी है ब्रह्मा जी के सृष्टि में किसी भी जीव के हाथ में उसका मृत्यु नहीं होगा किसका, इसलिए ब्रह्मा जी का सृष्टि नहीं था ये, भगवान की, भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि थोड़ी है, ना किसी पशु के रूप लिए, ना कोई मनुष्य का रूप लिए, ना किसी है, ऐसे अद्भुत रूप धारण करके आए, और किसका वचन को सही निभाया है, हिरण्यकशिपु का वचन को भी सही निभाया, क्या बोला था वो है, क्या उसका वचन कैसे सत्य निभाया है, हिरण्यकशिपु ने भी वो तो निभाए ऐसे मैंने उसको वचन हुआ, लेकिन हिरण्यकशिपु ने भी ये बोला था, अपने बोला था तेरे भगवान सर्वत्र कहाँ है, मैं इसको देखना चाहता हूं, कौन बोला, भगवान ने दिखा दिए ठीक है देख हाँ देखना चाहता देख, तो हिरण्यकशिपु भी दर्शन करने की इच्छा, तो देखने की इच्छा था, तो हाँ क्या बोल रहे, अरे वो यहाँ प्रश्न अलग है, भगवान तो किसके लिए प्रकट होते वो बात है, परित्राणा है साधना के बिना से, लेकिन यहाँ हिरण्यकशिपु जो देखना चाहता था किसको, इसलिए भगवान उसके सामने प्रकट हुए, मैं इसको देखना चाहता हूँ कहाँ है तेरे भगवान है, देखना चाहता हूँ उसको, देखना निकाल देख, लेकिन यहाँ तक तो भगवान तो प्रकट हो गए थे, अभी तक थोड़ा हिरण्यकशिपु पहले देखने लगा कि कौन है, है बड़े सावधानी से थोड़ा देखा भगवान जो प्रकट हुए खंभे के खंभे में से, कुछ नीचे से ऊपर तक पूरा दो दो जब देखा है, इतनी तेजस्वी है करोड़ों सूर्य की तरह तेज है, उसका खुद का तेज कुछ नहीं, सब पूरा फीका पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो साहस कर देख रहा था है, ये कैसा प्राणी है, है? न मृगंग न मानुष, ना ये सिंह है ना ना मनुष्य है, पशु नहीं कि मनुष्य, क्या है अद्भुत, तो फिर सोचा लग रहा कि ये मैं सुना है सभी जो शक्ति का जो मालिक है कौन, भगवान विष्णु, ये वही है प्लान किया मेरे भाई को तो पहले मारा, अभी ये मुझे मारने के लिए ऐसा ही रूप धारण क्या है, लेकिन बात में सुना है ऐसा ही करने से क्या होगा, मेरे को थोड़े कोई मार सकता है, न मेरे साथ कोई युद्ध कर सकता है, कौन सोचा हिरण्यकशिपु मुझे कोई मार सकता ना, कोई मर्जा युद्ध कर सकता है, ऐसा कहकर वो तुरंत भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया, वो कौन पहले गदा माने पहले भगवान के ऊपर आक्रमण, भगवान पहले आक्रमण नहीं किए, वो आक्रमण कर दिया पहले तो पहले आक्रमण करते भगवान तो अट्टहास कर हंसने लगे, जोर से हंस रहे थे, इतना जोर से अट्टहास करते थे, भयभीत हो रहा था कौन हिरण्यकशिपु, सुनना नहीं चाहता था, इतने जोर से भगवान अट्टहास करते थे, तो इसलिए उन्होंने चारों साइड कभी ऊपर चले जाता था और कभी नीचे, ब्याज की गति से, ब्याज की गति कभी ऊपर चले जाता था, कभी हाथ में क्या था, खड़का पकड़ा हुआ था, ढाल पकड़ा हुआ था, ढाल ढाल पकड़ा था, ढाल देखते पकड़ाते युद्ध कर, खड़का पकड़ा था, घुमा रहा था इतने स्पीड में, और कभी ऊपर चले तो कभी नीचे चले जाते, भगवान तो देख रहा था अरे कैसे ये मुझे क्या पकड़ेगा, सोच रहा था मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन भगवान ने बहुत आसान से इसको पकड़ लिया है, अभी पकड़ लिया इसको, इसलिए पहले श्लोक में कहा जैसे ही एक बेचारा छोटा पतंग विवश अग्नि के ठीक है सारे भगवान तो भगवान इसी प्रकार ये चारों ऊपर और नीचे जाकर घूमते रहता था, हटात आकर भगवान इतनी तेजस्वी थे कि जैसे ही बेचारा छोटा पतंग जैसे लग रहा था, कौन भगवान के सामने ये हिरण्यकशिप के छोटा पतंग जैसे लग रहा था, पतंगम अलखितो अग्नौ पतितः पतंगम, जैसे अग्नि में पतंग गिर जाता है। भगवान इतने तेजस्वी थे और उनके सामने हिरण्यकशिप का तेज तो पूरा फीका पड़ गया था, और ये बहुत उग्र मूर्ति में विराट रूप में भगवान धारण किए, और हिरण्यकशिप के छोटे रूप लगता है कि पतंग जैसे कोई आग में प्रवेश कर रहा है। लेकिन फिर भी वह तेजमय भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो भगवान ऐसे स्थिति को देखकर हिरण्य को अट्टहास कर रहे थे, और आज के श्लोक में जैसे बता गया कि भगवान ने इसको पकड़ लिया। कौन सा श्लोक आज 29 है। तो भगवान ने उसको कैसे पकड़ लिया ना, इसकी क्या उपमा दी गई है इस श्लोक में। विश्वक स्फुरंतं ग्रहणात्, भगवान हरि इसको ऐसे ही पकड़ लिए जिस प्रकार कौन पकड़ता है, ब्याल का अर्थात सांप। सांप किसको पकड़ता है, जथा आखुम, आखुम होता चूहा, चूहा को जैसे कौन पकड़ता है, सांप। एक उपमा दिया गया। दूसरा उपमा श्लोक में दिया जाता है कि अब उसको ऐसे भी पकड़, भगवान ऐसे ही पकड़ ले जैसे गरुड़ किसको पकड़ता है, सांप को पकड़ता है। दो उपमा देते हैं, इससे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, या कोई सांप किसी चूहा को पकड़ लेता है। ऐसा ही भगवान ने इसको पकड़ लिया, किसको, हिरण्यकशिप को, बहुत आसान से पकड़ लिया है। आसान से पकड़कर सोचते हैं भगवान ने, जानते हैं कि इसको वैसे ही अभी तक भगवान खाली उस साथ खेल रहे थे किसके साथ, हिरण्यकशिप के, क्यों जानते कि इसको अभी मारने से फिर उसका वचन झूठा हो जाए, किसका, ब्रह्म का। इसीलिए उन्हें प्रतिज्ञा कर रहे थे कब तक, संध्या समय तक है, ना दिन है ना रात है, तो सूर्यास्त तो होने तक भगवान ने इसलिए इसके साथ खाली खेल रहे थे, थोड़ा मजा ऐसे इधर खेल रहे थे। तो सूर्यास्त हो गया, देखिए उस समय हो गया, अभी यार प्रतीक्षा नहीं किए, भगवान ने तुरंत ही पकड़ लिए हैं। जैसे सांप पकड़ लेते तुरंत चूहा को, वह गरुड़ जैसे किसी सांप को पकड़ लेता, ऐसा ही भगवान ने इसको पकड़ लिए। पकड़े के क्या किए, कहाँ पर गए, इसे ब्याड़ो जथा अक्षुम, जैसे सांप जैसे चूहा को पकड़ता, ऐसे बाको जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता, ऐसे पकड़कर इन्होंने वो देहली पर इसको ले गए, कौन सा घर द्वार जाए से अंदर से बाहर निकलने के लिए, वहाँ पर लेकर आतो को उसको अपने गोद में ले लिए है, क्योंकि वो मरेगा नहीं, कहाँ, ब्रह्मा जी का वरदान है, आकाश में नहीं मरेगा और नीचे भी नहीं मरेगा है, स्थल में नहीं मरेगा, आकाश में नहीं मरेगा, जल में कहीं मरेगा नहीं। तो भगवान बोले कि ठीक है, पकड़ गया, इतना ये दिन में नहीं मरेगा, रात को नहीं मरेगा, इसलिए ये कौन सा समय था, संध्या समय है, ना दिन है ना रात है, गोधड़ी है। तो उसको लाए और गोद में रख लिए, गोद में ला के फिर इस वचन को भी ब्रह्मा जी का रक्षा किए कि नहीं ये आकाश है ना, नहीं पृथ्वी है, स्थल नहीं, पूरे अपने गोद में ही रख लिए। गोद में रखकर फिर क्या, उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा है, कोई भी अस्त्र शस्त्र से मरेगा नहीं। तो इसीलिए भगवान कहे कि अस्त्र शस्त्र तो नहीं मरेगा, इसलिए क्योंकि वो जानता सुदर्शन है कि जब ब्रह्मा भगवान के पास है, वो सुदर्शन भेज के किसको भी काट लेता है, किसका सिर काट लेता है, इसलिए कहा था कि ये विष्णु का सर अस्त्र से भी मेरी मृत्यु नहीं होगा। तो बोले ठीक है, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा तो ये ठीक है, ये है नाखून है, इसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बोलता है, मृत वा जीवित, कोई जीवित व्यक्ति के हाथ से मरेगा नहीं, किसी मृत व्यक्ति के हैं किसी भी हाथ से। तो बोले कि ये मृत भी नहीं है, जीवित भी नहीं है, क्या नाखून ऐसे काटने से कोई कष्ट हमको नहीं होता है? लेकिन फिर भी ये कोई जीवित, इसको मृत जीवित नहीं एक दृष्टि कहा जाता है, लेकिन दूसरे दृष्टि में इसको जीवित भी कहा जाता है, क्योंकि बढ़ता है वृद्धि, आस्ते आस्ते बढ़ता है ना नाखून। इसलिए भगवान ने इसी के सहारा लिया, नाखून के सहारा लिया, देहली पर अपने गोद में रख लिए शरीर में उसके शरीर को, और नाखून की सहायता में बहुत आसान से इसके शरीर को क्या किए, फाड़ डाले। आए इतनी उग्र मूर्ति कभी भी भगवान विष्णु के किसी अवतार में भगवान धारण किए। तो तब से छटा छटपटा रहा था, इधर उधर हाथ हाथ करे से हिला रहा था, लेकिन कुछ करने का उसका शक्ति नहीं था। वो जब सोचता था अपने को मेरे समान और शक्तिशाली कोई नहीं है, इंद्र का वज्र भी मेरे त्वचा को कभी भेद नहीं कर सकता था, इंद्र का वज्र मारने से भी इसका त्वचा में भेद नहीं होता, वो वज्र को भी कुछ नहीं करता था, और भगवान के नाखून इसको आसान से फाड़ डाला। तो किसका शक्ति, भगवान के नाखून का ज्यादा शक्ति कि इंद्र का वज्र का ज्यादा शक्ति है? भगवान के नाखून का जितना शक्ति, इंद्र का वज्र का भी हो शक्ति? तो नाखून से इसलिए इसको बहुत आसान से फाड़ दिए, फाड़ दिए और अंतराड़ को निकाल लिए, इसका अंतर पड़ा था इसको लेकर लिपट लिया है। इनके जो बाल था सिंह के शरीर में बाल सो गए, सब खून सब छिड़क के भयंकर रूप दिखाई पड़ता था। ऐसे भगवान चाट भी रहे थे अपने जीव को निकाल कर, ऐसे उग्र मूर्ति कभी नहीं देखे थे, उग्र नृसिंह। हमारे मायापुर में जो नृसिंह मूर्ति कैसे है, उग्र है कि शांत है? भगवान नृसिंह के क्षेत्र कौन सा है? अहोबिल्लो है, अहोबिल्लो। हमारे आठ नृसिंह, आठ प्रकार के नृसिंह देव की सब अलग अलग मूर्ति है, स्वयं प्रकटित विग्रह, स्वयं भू विग्रह सारे हैं। उस पहाड़ में ही, उस पहाड़ में ही ऊपर में उसका जो हिरण्यकश्यप कहाँ पर फड़े थे भगवान, वो जगह कहाँ है? वही पहाड़, अहोबिल्लो पहाड़ के ऊपर में। कहते कि आज भी वो खंभा है, टुकड़े पत्थर लाकर उसके पूजा करते हैं लोग, ले आते हैं उसे पत्थर लाके, लेकिन वहाँ पर चढ़ के जाना सब लोग नहीं जाते, बहुत कम लोग जाता है, बहुत दिक्कत, बहुत कठिन है उठ के जाना है पहाड़ के ऊपर, कोई रास्ता बस्ता ऐसे ऐसे उठ के जाते हैं। और ऊपर में खंभा है, आज भी बोलते इसी खंभा से यहीं पर हिरण्यकश्यप के क्या था, वो महल था, राजमहल था, यहीं पर एक खंभे से प्रकट हुए थे कौन, भगवान नृसिंहदेव। अरे वहीं खंभे से प्रकट होकर वहीं पर फाड़े, वही अहोबिल्लो पर्वत के ऊपर हैं, वहीं वहीं पर है खंभा है जहाँ से नृसिंहदेव प्रकट हुए थे। नृसिंह भगवान के वो खंभा का पत्थर को आज भी साक्षात नृसिंहदेव के रूप में आज पूजा किया जाता है। तो वह अहोबिल्लो धाम उसमें आज भी भगवान के आठ अलग अलग मूर्ति हैं, अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं, स्वयंभू विग्रह हैं। लेकिन इसमें उग्र नृसिंह, शांत नृसिंह भी होते हैं, शांत लक्ष्मी नृसिंह, लेकिन हमारा मायापुर में जैसे नृसिंह है उग्र नृसिंह है। फाड़े ऐसे फाड़ दूंगा अभी, नाखून पर ऐसे करके खड़े हैं, मेरे मेरे भक्तों की तुम शत्रुता करोगे। पहले मायापुर में डकैती हो रहा था ना, बार बार डकैत लोग घुसते थे, आके लूटते थे, इसीलिए नृसिंहदेव को हाँ पकड़ कर किसी भक्तों की सलाह से नृसिंहदेव को, उग्र नृसिंहदेव को पकड़ कराए हैं वहाँ। जब से नृसिंहदेव आए तब से कोई साहस नहीं, किसी की हिम्मत नहीं होता है वहाँ आना। ये क्या है, बाधा ने सर्व विघ्न विनाशक है। प्रभुपाद जी ने जब सबसे पहला रथ यात्रा सांस फ्रांसिस्को में शहर में मनाया है, जगन्नाथ रथ, सबसे पहला जगन्नाथ रथ यात्रा, इसी रथ यात्रा में भी कुछ काले गुंडे, काले मैंने कुछ होते लोग हैं, वो तो डिक्लार कहे थे तुम्हें ये रथ यात्रा बंद करो। आज भी होता, आज अमेरिका में जो रथ यात्रा होता है कहीं भी, न्यूयॉर्क में प्लस कहीं भी, कुछ लोग है एक ग्रुप रहते हैं, वो आते हैं बोलते हैं बंद करो, बंद करो, हैं इसको रथ यात्रा का विरोध करते हैं। वो क्रिश्चियन लोग हैं कुछ कुछ काले से, अरे ये सब ये आइडलों से ये सब मैंने अभिजीत का, तो उस समय धमकी दिए थे, देखो यदि बंद नहीं करोगे ये रथ यात्रा को तो हम तुम्हारे गुरु के ऊपर अटैक करेंगे, हैं बहुत तगड़े लोग थे काले काले। तो इसलिए ब्रह्मानंद प्रभु गौरगोनी यशु कहे थे कि प्रभुपाद आपको नहीं जाना, कहाँ रथ यात्रा में नहीं आना, वो लोग धमकी दे रहे हैं, अटैक करेंगे आपको, हम नहीं चाहते आपको नहीं। प्रभुपाद बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, कैसे होगा, कैसे भी हो मुझे लेके जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊँगा, मैं किसी को मैं तो बोले फिर क्या करेंगे। तो पीछे से साइड से रथ का पीछे साइड से वो ब्रह्मानंद प्रभु ने ड्राइविंग करके गौरगमनी आप उनको ला कर उठा के चढ़ा दिया रथ में, पीछे से लाके चढ़ा लिया, उनको पता नहीं चला है। लेकिन बाद में थोड़े से मेरा रथ स्टार्ट हो गया तब चला, पता लग गया अरे इनका गुरु रथ में आ चुका है, तो फिर तो वो लोग हमला करने लगे पूरे में, बहुत शक्ति सत्य है काले पुत्र। अब उनके साथ में कुछ भक्त लोग भी फाइटिंग करते थे। रूपा जी देखे रथ के ऊपर खड़े, बोले कि अभी मैं आप लोग को एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र को यदि आप सभी लोग गाओगे ये सारे हमेला ये सब गुंडो अपने आप हैं सभी ध्वस्त हो जाएंगे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी तभी ये नृसिंह मंत्र दिया। पहले नृसिंह आरती इस क्रम में शुरू से नहीं था, ये सांस पांस की रथ यात्रा में। तो प्रभुपाद जी ने खड़ा होकर रथ के ऊपर कहे, सब सभी लोग प्रभुपाद जी कहे कि मेरे साथ सभी लोग गाइए हैं, नमस्ते नरसिंहाय,
नमस्ते नरसिंहाय,
प्रह्लाद
फिर गाए तब कर कमल वरे हम गाते हैं है?
जब नृसिंह वंदना गा प्रभुपद गाए ने जोर से गाए, हटात सब लोग देख रहे थे पुलिस की गाड़ी आ गए हैं, सात आठ भैन आ गए, सो कालों को सो पकड़े पकड़े भैन में सुप लेके सब भक्त लोग ने ताली बजाए है। तो अभी सारे भक्तों को पूरा विश्वास हो गया कि ये नृसिंह मंत्र गाने से ही सारे बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पूरा तब से फिर इस्कन में पूरे परमानेंट हो गए हैं। फिर डेली हमें नृसिंह देव का वंदना करते हैं, किसके लिए? भक्ति भक्त ने भक्ति विघ्न विनाश सब विनाश कर देते। इसलिए नृसिंह देव की ये कौन है, इसको बार बार ठक ठक कर रहा है, इसको कौन बंद कर रहा है फिर खुल रहा है, कौन है? तो इसलिए भगवान नृसिंहदेव ये कैसे मूर्ति है? उग्र मूर्ति। लेकिन सिद्धर स्वामी कहते कि उग्र है वही अनुग्रह मूर्ति, ये बहुत उग्र तो है लेकिन ये उग्र किसके लिए है? अनुग्रह के लिए। किसको अनुग्रह करते हैं? भक्तों के प्रति है, प्रह्लाद को अनुग्रह किए हैं। उग्र है वही अनुग्रह मूर्ति, ये उग्र दिखाई पड़ते हैं लेकिन विशेष रूप में भक्तों को रक्षा कर अनुग्रह करने के लिए ही इनके रूप है उन्होंने प्रकट किया है, है? समय हो गया ना क्या? प्रसाद का समय हो गया, 9 बज गया है, कोई इसमें यहीं पर समाप्त करता हूं क्योंकि बार बार ठक 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 ठक। कोई किसका प्रश्न है? किसके कोई प्रश्न है? हाँ
है?
किसको अपराध लगेगा? आप हिरण कश्यप बन सकते तो फिर ठीक है। किसा क्या प्रचार करते हैं? नहीं नहीं ओसा हीन भावना नहीं है, हम जानते हैं प्रचार के लिए तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे प्रचार होगा? अभी रावण अभी मर गया ना, जो जो रामानंद सागर का वो जो चलता था टीवी सीरियल रामायण सब देख रहे थे, उसमें जो रावण बना था अभी मर गया, लेकिन सभी लोग फिर शोक प्रकाश कर लगे, रावण वो सूत खुद ही रावण नहीं था है, वो भक्त वो भी रामचंद्र की महान भक्ति करता था, यानी कभी कभी हिरण्यकश्यप भी कोई राक्षस थोड़ी था, वो भी भक्त था, महान भक्त था, लेकिन कभी कभी ऐसे भगवत इच्छा से ऐसे ही रोल करना पड़ता है, कभी कभी रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन हम हमारे हम तो असली राक्षस गिर हमारे पास में प्रकृति में सारे बदगुण भरा हुआ है भगवान, इसलिए हम लोग कैसे भगवत धाम लेके जाएंगे उसके लिए से वो नाटक है करते हैं। नहीं तो भागवत में जितने भी चरित्रों की वर्णन की गई है सभी चरित्र मुक्तात्मा है, ये कोई बदजीव